एक नदी बहती है, उस इलाके या उसके आसपास से कभी इसको खुरासान का इलाका भी कहा जाता है। तो खुरासान और उसके आसपास से या मावराउन नहर के इलाके से एक शख्स हजरत महदी की मदद के लिए निकलेगा और बहुत बड़ा लश्कर लश्करे जर्रार लेकर निकलेगा। उसका नाम हारिसे हर्रास होगा, हारिस हर्रास। तो उसका नाम हारिसे हर्रास होगा, वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकलेगा। उसके लश्कर के पांच हिस्से होंगे, तो उसके पहले हिस्से में आगे हिस्से में एक शख्स होगा, उसका नाम मंसूर होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हारिसे हर्रास जो हजरत महदी की मदद और नुसरत के लिए निकलेगा, वो इस्लाम की और हजरत महदी की मदद करेगा और इस्लाम को करार और गलबा देगा, उसको मजबूती अता करेगा। जैसे शुरू दौर में कुरैश ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी और आपको ठिकाना दिया था, ऐसे ही हारिसे हर्रास वो हजरत महदी की मदद के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकलेगा। उस लश्कर के आगे हिस्से में मंसूर नामी शख्स होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी वजाहत फरमाई है और बात खोल कर बताई है। एक हदीस में है, हजरत सौबान रावी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब हारिसे हर्रास लश्कर लेकर निकले, यानी जब तुम देखो कि खुरासान के आसपास से लोग काले झंडे लेकर निकले हुए हैं, तो तुम भी उस लश्कर में शामिल हो जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी कि तुम भी उस लश्कर में शामिल हो जाओ, वो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा लश्कर होगा और वो हजरत महदी की मदद और उनकी नुसरत किया करेगा और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह से मुल्क शाम जो सीरिया है, उसका एक शहर है हलब, उससे करीब आमाक या दाबिक नाम के दो छोटे शहर हैं या छोटे इलाके हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुल्क शाम में मुसलमान जमा होंगे हजारों की तादाद में, रोमियों से यानी यूरोप के ईसाइयों से मुकाबला करने के लिए। और जब बड़ी तादाद में मुसलमानों का लश्कर जमा होगा और तैयारी करेगा, उधर वो भी बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकलेंगे, लड़ाई होगी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि लड़ाई शुरू होगी और शुरू होने से पहले लश्कर का एक हिस्सा लड़ने के लिए जाएगा और शहादत की तमन्ना लेकर जाएगा और ये तमन्ना लेकर जाएगा कि हम गालिब होकर ही वापस आएंगे, शिकस्त नहीं खाएंगे। लिहाजा पहले दिन लड़ाई होगी, जबरदस्त घुमसान की लड़ाई होगी और लड़ाई होते होते रात आ जाएगी, ना मुसलमान गालिब आएंगे ना रूमी और ईसाई गालिब आएंगे, रात की वजह से लड़ाई रोक दी जाएगी और हर एक अपनी अपनी जगह वापस हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन लश्कर का एक बड़ा हिस्सा निकलेगा और ये अज़्म और नीयत पुख्ता इरादा लेकर निकलेगा कि हम गालिब होकर ही वापस आएंगे, लिहाजा पूरी हिम्मत के साथ बड़ी तैयारी के साथ ईसाइयों के साथ लड़ाई होगी और लड़ते लड़ते शाम हो जाएगी, रात आ जाएगी, कोई फैसला नहीं होगा और इधर का लश्कर उधर का लश्कर दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। फिर जब तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन एक बड़ा हिस्सा फिर निकलेगा और यही अज़्म और इरादा लेकर निकलेगा कि हम गालिब होकर ही वापस आएंगे और शहादत पाएंगे, चुनांचे लड़ाई होगी घुमसान की, फिर रात हो जाएगी और कोई फैसला नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहां तक के जब चौथा दिन दाखिल होगा तो जो लोग बचे हुए होंगे वो आपस में पुख्ता इरादा करेंगे, अज़्म करेंगे और तय करके निकलेंगे और इस कदर जबरदस्त लड़ाई होगी, इस कदर जबरदस्त लड़ाई होगी कि वैसी लड़ाई नहीं देखी गई होगी। बिलआखिर जो मुसलमान चौथे दिन निकले थे अल्लाह तबारक व ताला उनको फतह नसीब करेंगे और वो गालिब होकर आएंगे। इस हदीस के शुरू में अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला कहते हैं, ऐसी लड़ाई होगी कि न मीरास तकसीम होगी और ना ही माल गनीमत से खुशी होगी। यहां आकर फरमाते हैं कि जब लड़ाई पूरी होने के बाद, खत्म होने के बाद देखेंगे तो हर हर खानदान में से 100 में से 99 शहीद हो चुके होंगे। तो जब एक आदमी बचेगा तो मीरास क्या लेगा और वो माले गनीमत से खुश क्यों होगा। लिहाजा इसी लड़ाई होगी और इसी लड़ाई के दरमियान अचानक खबर आएगी, कोई पुकारने वाला पुकारेगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि शैतान पुकारेगा, हकीकत अल्लाह जानते हैं कि तुम यहां माल गनीमत हासिल कर रहे हो, उधर दज्जाल तुम्हारे अहल उयाल में, घर वालों में आ चुका है। अब ये लड़ाई हजरत महदी के साथ मिलकर लड़ी गई थी, हजरत महदी और उनके साथ बड़ा लश्कर ये लड़ाई दोनों ने लड़ी और चौथे दिन जाकर गलबा नसीब हुआ, फतह आता हुई। अब कोई खुशी नहीं थी, मीरास भी तकसीम नहीं हो रही थी, जो मुसलमान थे वो माल गनीमत लेने ही वाले होंगे, उधर से कोई पुकारने वाला पुकारेगा कि दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। अब ये तरतीब याद रखिए कि हजरत महदी का जमाना शुरू हो गया और जो अलामत है साथ साथ वो दुनिया में तशरीफ लाए। और यहां रुककर ये बात समझे कि हजरत महदी आसमान से नाजिल नहीं होंगे बल्कि वो मदीना मुनव्वरा के होंगे और उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, उनका लकब महदी होगा, हिदायत याफ्ता होंगे। और कियामत की जो बड़ी अलामतें हैं उनमें से आप ही पहली अलामत होंगे और हजरत महदी बरहक हैं اس بات کے لیے بہت سی علامتیں اللہ تبارک و تعالی ظاہر کریں گے جو آپ کے سامنے تقریباً آ چکی ہیں. اب یہاں دجال کے بارے میں آواز آئے گی تو مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, اور یہ بات بھی آ چکی کہ مدینہ منورہ میں جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا بادشاہ, اس کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ تلاش کریں گے کہ کس کو حکمران بنائیں گے. حضرت مہدی کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ مجھے حکمران بنائیں گے, حاکم بنائیں گے, تو وہ مدینہ منورہ سے چھپ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے, اور وہ اپنے مکہ مکرمہ میں کسی جگہ رہیں گے. لوگ تلاش کر کے ان کو ان کے گھر سے نکال کر حرم شریف میں لائیں گے, مطاف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے, حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, اور حضرت مہدی کا نام سن کر سفیانی آدمی نکلے گا, اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا, اس کو اور اس کے پورے لشکر کو. اور ادھر جو حارث حراس اور منصور ہے اس کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے, ماوراء النہر کے علاقے سے وہ بہت بڑا لشکر لے کر نکلے گا, اور وہ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا اور حضرت مہدی کے ساتھ مل کر وہ مقابلہ کرے گا. ادھر دجال کے بارے میں خبر مشہور ہو جائے گی. دجال بھی دنیا میں پیدا ہو چکا ہے اور آج موجود ہے, حدیث میں تفصیل آئی ہے, انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. تو دجال کے بارے میں جب خبر مشہور ہوگی تحقیق کے لیے کہ جا کر دیکھ کر آئیں واقعی دجال آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے, 10 افراد کو منتخب کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو 10 افراد منتخب ہوں گے میں ان کا نام جانتا ہوں, ان کے والد کا نام جانتا ہوں, ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کا رنگ کیا ہوگا. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو 10 آدمی جائیں گے تحقیق کے لیے وہ روئے ارض پر پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین لوگ ہوں گے. تو دجال کے بارے میں کئی مرتبہ خبر پھیلے گی کہ دجال آ چکا ہے, لیکن جھوٹی خبر ہوگی. مگر جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا, یہ تفصیل بھی آئے گی. تو یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ تفصیل پوری آئی ہے کہ کس طریقے سے حضرت مہدی رومیوں سے, یورپ وغیرہ کے عیسائیوں سے لڑائی لڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو غلبہ عطا کریں گے. حضرت مہدی 7 سال یا 9 سال ان کی حکمرانی ہوگی, اور اتنی شاندار حکمرانی اور اتنی بہترین حکمرانی ہوگی کہ اس میں کوئی غریب اور فقیر نہیں رہے گا. اس قلیل مدت میں, مختصر مدت میں وہ پوری دنیا کو امن سے, انصاف سے بھر دیں گے اور دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کریں گے. اور حضرت مہدی کے دور میں ہی دجال آ جائے گا. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے, ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہوا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے قسطنطنیہ تک پہنچ جائیں گے. قسطنطنیہ یہ جو آج ترکی ہے, ترکی, اس کا کیپٹل ہے جسے استنبول کہتے ہیں, اور آج وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے لیکن پھر وہ غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا قیامت سے پہلے, اور حضرت مہدی اسے فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, اور اس وقت بھی خبر مشہور ہوگی. لیکن اس سے پہلے एक और शहर को फतह करेंगे। उस शहर का नाम मुहद्दिसीन ने बताया है लेकिन हदीस में नहीं आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम एक ऐसा शहर जानते हो कि उसका एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ खुश्की है, यानी जो जमीनी इलाका है वो इलाका है। सहाबा से पूछ रहे हैं, ऐसा एक शहर जानते हो? सहाबा ने कहा, हाँ हम जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शहर फतह होगा लेकिन हथियार से, तलवार से फतह नहीं होगा, बल्कि लोग उसका मुहासरा करेंगे, उस शहर पर हमला करेंगे। तो सबसे पहले ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे तो शहर का एक हिस्सा फतह हो जाएगा, टूट जाएगा। रावी कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था कि वो समंदर वाला हिस्सा होगा, फिर ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे तो खुश्की का हिस्सा फतह हो जाएगा और वहां से लश्कर यानी दुश्मन खत्म हो जाएंगे, और फिर ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे तो रास्ता खुल जाएगा। अब यहां बैठकर वो नक्शा हम समझ नहीं सकते कि किस तफसील के साथ, किस मंजर के साथ ये वाकया पेश आएगा, अल्लाह जानते हैं और जो उसमें शरीक होंगे वो जानेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसा लश्कर, एक ऐसा शहर होगा जो हथियार से और लड़ाई से फतह नहीं होगा बल्कि ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर से फतह होगा। जब फतह होगा, लोग मुसलमान माल गनीमत हासिल कर रहे होंगे, उसी दौरान आवाज आएगी कि दज्जाल पीछे आ चुका है। जैसा कि कहा गया, एक दो नहीं कई मर्तबा ये खबर फैलेगी कि दज्जाल आ चुका है। गलत खबर होगी, लेकिन जब लोग अपने अपने घरों में, इलाकों में जाएंगे तो वाकई दज्जाल का खुरूज हो जाएगा।